ओम शांति।
तो आज हम ऐसे बाबा के विशेष रतन जिनकी जिनका नाम ही है निर्वैर, शिव बाबा की महिमा करते हुए हम कहते हैं निराकारी, निरअहंकारी, निर्भय, निर्वैर। और उस निर्वैर भाई जी को हम अपने सामने देखकर आज बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। तो अभी हम सब निर्वैर भाई जी से क्लास करेंगे, दृढ़ता से सफलता, सफलता से प्रत्यक्षता।
ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब स्वयं बेहद का बाप हम बच्चों को सर्वोत्तम पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं, तो इस समय जो भी शुभ संकल्प रखते हैं उसका अगर हमें अच्छी तरह से अपने मन में नक्शा क्लियर है कि हम क्या करना चाहते हैं, और उसका रास्ता भी क्लियर है कि हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हिम्मत भी रखते हैं कि हमें ये करना है, तो जब हिम्मत रखते हैं तो हिम्मत का रिटर्न है कि बाबा की विशेष मदद मिलती है और उससे सफलता, बाबा का वरदान है कि आप बच्चों का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सफलता आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन नहीं उठता, ये प्रश्न नहीं उठता कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। स्वयं भगवान का दिया हुआ वरदान है। भगत लोग वरदान मांगने जाते हैं, देवियों के मंदिर में जाते हैं, शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को जो बाबा के इस समय डायरेक्ट संबंध में आए हैं उनको ये सफलता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही अलौकिक जन्म लिया तब से ये वरदान प्राप्त हो जाता है। अगर कहीं असफल भी होते हैं वो भी सफलता का एक स्टेप ही माना जाता है। क्यों? जिस समय असफल होते हैं तो फिर बाबा को ही याद करते हैं, विशेष याद करते हैं, खास योग लगाएंगे, खास तपस्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो खास भट्टी का प्रोग्राम रखेंगे, और अंततः सफल हो ही जाते हैं। अगर हम अपने इस ईश्वरी यज्ञ के इतिहास को देखें, इस इतिहास को जानने से भी यही लगता है कि कलयुग के अंत समय जब स्वयं सर्वशक्तिवान बाप भी नव रचना रचते हैं, सत्यु की स्थापना की नींव रखते हैं, ईश्वरी यज्ञ की स्थापना करते हैं, तो स्थापना से लेकर पूरे इतिहास में देखेंगे समय प्रति समय रुकावटें बहुत आई, लेकिन क्योंकि बाबा ने बड़ी क्लियर साफ दिव्य दृष्टि के द्वारा वो नक्शा बता दिया हुआ है। आप में से अगर मधुबन के छोटे हॉल में जिन्होंने भी फोटो देखे होंगे लगे हुए, तो उसमें खास बाबा के कुछ ऐसे ब्रह्मा बाबा के फोटो हैं जिससे आपको स्पष्ट नजर आता है कि बाबा को भविष्य क्या होने वाला है उसका नक्शा ऐसा क्लियर सामने है जिसके कारण बाबा का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो बाबा के फोटोस में देखने में आता है। सभी जानते हैं यज्ञ के इतिहास में जब स्थापना का कार्य शुरू हुआ उस समय भी विघ्न आए थे, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं, भारत में जब सब भाई बहने 1950 में शिफ्ट करके आए, उसके बाद जब सेवा के लिए निमित्त बने बाहर गए, दादी जी, जानकी दादी और दादियां अथवा कुछ भाई, तो भी भारत की ये प्रथा रही है और विश्व की ही प्रथा रही है कि अगर कुछ नई बात होने लगती है तो ऑर्थोडॉक्स माइंडेड लोग सामना जरूर करते हैं, विघ्न जरूर डालते हैं, कितनी ही अच्छी बात क्यों ना। लेकिन कार्य किसका है? किसी एक व्यक्ति का होता, किसी एक पार्टी का होता तो शायद रुक जाता, लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा का कार्य है ये, उसकी प्लानिंग है, ये उसकी विजन है, उसकी दृष्टि है, और साथ साथ उसका बड़ा स्पष्ट ज्ञान है। विघ्न कब तक आया? जब तक भक्त आत्माओं को ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये कार्य किसका है। भक्ति से अलग है ये ज्ञान मार्ग है, इसकी स्पष्टता न होने के कारण सबने ये समझा कि ये तो हमारा जो कारोबार चल रहा है इससे विपरीत हो रहा है कुछ। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये भगवान का कार्य है और वो भक्ति का फल देने के लिए आए। जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल देने के लिए जब स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, तो भी जब तक दिव्य दृष्टि नहीं, वही पुरानी दृष्टि से जब तक देखते रहे तो विघ्न डालते रहे, पर जब दिव्य दृष्टि मिल गई, समझ में आ गया सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, और इससे व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ है, इससे पारिवारिक जीवन में क्या लाभ है, इससे सामाजिक जीवन में क्या लाभ है, और कैसे ये तो एक नई सत्युगी दुनिया की स्थापना का कार्य है, ऐसी महान आप जैसी आत्माओं को, महान भाग्यशाली आत्माओं को जब ये स्पष्ट हो गया तो उन्होंने पुरानी कुरीतियों को, पुराने रस्मों रिवाज को, सबको एक किनारे करके सच्चाई को अपना दिया। उस सच्चाई को अपनाने में व्यक्तिगत जीवन में भी काफी विघ्न आते हैं, सभी जानते हैं। ज्ञान शुरू करते हैं तो पहले पहले खास भाइयों को तो यही लोग कहते, तुम किसके चक्कर में आ गए? अगर कोई अच्छे बड़े घर का कोई आता है, बड़े पोजीशन वाला आता है, कहते हैं कहां ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में पड़ गए। लेकिन आने वाले जो आत्माएं हैं उनको जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जा रहा हूं, ब्रह्मा कुमारियों को जो बाबा ने शिव बाबा ने जो सृष्टि चक्कर का ज्ञान दिया है, जिससे हम आवागमन के चक्कर से बाहर निकलते हैं, वो प्राप्त करने के लिए आया हूं, तो वो किसी की सुनता नहीं, बल्कि वो एक एग्जाम्पल बन जाता है। किस बात की एग्जाम्पल? कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए जो दृढ़ता चाहिए वो उसके जीवन में प्रैक्टिकल में आ जाता है। बल्कि ये देखा गया है कि जितने विघ्न ज्यादा आते हैं उतनी दृढ़ता ज्यादा आती है। जिसके सामने कोई विघ्न नहीं आए, कोई एग्जामिनेशन नहीं आए, तो वो थोड़ी सी हलचल में ढीले हो जाते हैं। लेकिन जिसको पूरी ये दिव्य दृष्टि क्लियर है, कितने विघ्न छोटे आए, बड़े आए, व्यक्तिगत आए, अपने परिवार से आए, समाज से आए, तो साफ कहते हैं मैं भगवान की श्रीमत पर चलने वाला हूं, आप क्या भी कहो। और भगवान की श्रीमत, जनरल श्रीमत सबको क्या मिली, आने से क्या मिली है? बाबा ने बहुत स्पष्ट समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप स्वयं पावन थे, देवता थे, डबल सिरताजधारी थे, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जैसे थे, उस स्थिति से नीचे आ गए, अब फिर से वो बनना है। ऐसा महान लक्ष्य दुनिया में कोई देता नहीं। भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो, दान पुण्य करते रहो, और फिर भी कहेंगे उनकी आशीर्वाद लो। ये कभी स्वप्न में नहीं आया था कि भगवान तो स्वयं आकर के वर्षा देता है, स्वयं शिक्षक बन के सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाता है, और स्वयं सतगुरु बन करके सबको अपने साथ वापस घर ले जाकर के जीवन मुक्ति में भेज देता है। जिनको ये बात स्पष्ट हो जाती है, उनको पहली बात तो ये समझ में आती है कि हम आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, और हमने ही ये सारे सृष्टि चक्कर में आज से अंत तक पार्ट बजाया। और दूसरी बात समझ में आती है कि हमारा अनादि और आदि संस्कार जो है वो पवित्रता का है। आज के युग में पवित्रता को खत्म करने के लिए जितनी एडवर्टाइजमेंट होती है, जितनी फिल्में बनती हैं, जितना टेलीविजन प्रोग्राम होते हैं, वो पहले कभी नहीं हुआ था, खुल्लम खुल्ला। और ऐसे दूषित वातावरण में एकदम पावन बनने का संकल्प करना, एकदम श्रेष्ठ बनने का संकल्प करना, कहां सारी दुनिया में ये माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार तो ये तो जीवन का अंग बन चुका है, और बाबा के बच्चे चाहे क्या भी हो कि हमें तो अपनी जीवन को पूरा मूल्य निष्ठ बना के चलना है, भ्रष्ट जीवन में नहीं जाना है। ऐसे तूफान का सामना करने के, ऐसा जो दरिया नीचे को जा रहा है बिल्कुल उससे उल्ट जाने का है, ऊपर जाने के लिए कितनी डिफिकल्टी आती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना सामना करना पड़ता है, लेकिन जिसके दिल में लगन है, कौन सी लगन? दो बातों की। एक लगन है कि मुझे बाबा का योग्य बच्चा बनना है, और पवित्रता उसका मूल आधार है, वो मुझे अपनानी है चाहे कुछ भी हो जाए। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही मेरा वास्तविक स्वधर्म है, इसको अपनाना दृढ़ता से दिल में आ जाता है। और दूसरा उसके साथ में विशेष कि जैसे बाबा सर्व का कल्याणकारी है, विश्व हितकारी है, सारे विश्व का वो विश्व सेवाधारी है, फिर से विश्व को ऐसा नया बनाने के लिए, फिर से इसको पावन बनाने के लिए, फिर से इसको कलयुग से सतयुग में परिवर्तित करने के लिए जो भी मेरा तन मन धन मन वाणी कर्म वो सब मैं इसमें लगा करके न केवल अपना भाग्य बनाता हूं बल्कि अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त बनता हूं। उसमें भी दृढ़ता आती है क्योंकि उसके लिए भी बहुत विघ्न आते हैं। थोड़ा सा कोई इस तरफ सेवा के लिए संकल्प करता है तो कहेंगे भाई ये क्या करते हो, घर को लुटा दोगे तुम तो। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकल में तो ये है, बाबा कहता है बच्चे आप बीज बोते हो एक रुपए का और मिलता क्या है रिटर्न में। सुदामा का मिसाल है, ये भी बाबा ने कहा है कि आज जो स्वयं को स्वर्ग में समझते हैं वो बाबा के वारस बच्चे बनकर के सत्यों के मालिक नहीं बनेंगे। साधारण जिन्होंने बाबा को पहचाना है और जिन्होंने बाबा की इस प्लान को समझा है कि अब कलयुग से सतयुग में बदलने का समय है, यह अमूल्य समय है, ये सीजन है विशेष, ये बार बार नहीं आती है, कल्प में एक ही बार, ऐसे टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और ऐसे टाइम पर क्या करना है। फसल का टाइम होता है जब गेहूं बोने का समय है, उस समय कोई चावल लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। गन्ने का समय है, उस समय वो बोएंगे तो ही वो लगेगा। सर्दी के दिनों में जैसे अभी आम की फसल आ रही है, ऐसे नहीं होने वाली है, करके कोई ऐसा थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिल भी जाता है, पर हर बात का सीजन है और ये सीजन है हम सभी मनुष्यात्माओं के लिए फिर से मनुष्य से देवता बनने का, जिसके लिए गुरबाणी में ग्रंथ साहब में गायन है कि मानुष ते देवता किए कर्त न लागे वार। समय नहीं लगता है, पर कब, भक्ति तो हमने 63 जन्म की, देवता तो बने नहीं। मनुष्य को मनुष्य जब तक भक्ति सिखाते हैं देवता नहीं बनते, जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा राजयोग न सिखाए तब तक देवता बन नहीं सकते। और ये वो ऐसा सीजन कहो, ऐसा अमूल्य समय कहो कि जब फिर से मनुष्य को देवता बनाने के लिए, बाबा कहता है मन देवताएं भी मनुष्य हैं, लेकिन वो दिव्य गुणधारी हैं, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। उसके भेंट में आज के युग में क्या मिलता है, किस तरह का वातावरण है, अखबार पढ़ो, टेलीविजन न्यूज देखो, कुछ भी देखो, क्या मिल रहा है, अहिंसा परमो धर्मा की जगह रोज क्या हो रहा है, हिंसा। सर्वगुण संपन्न की जगह क्या मिल रहा है, भ्रष्टाचार। तो सोच विचार करके क्योंकि बाबा के बच्चे जो हैं वो सबसे समझदार है। ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, जिसके लिए गायन है श्री भगवानो वाच, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, मुझे योगी तो आत्मा प्रिय है। और उसके साथ में कहा बाबा ने, मुझे सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय है, जो सबकी सेवा के निमित्त बनते हैं। तो समय को पहचान कर समय के अनुसार, इस समय परमात्मा पिता का जो पार्ट है विश्व को परिवर्तन करने का, उसको पहचान कर उस ऐसे समय पर मुझे क्या करना है, मुझे अपना जीवन ऐसा दिव्य बनाना है, ऐसा श्रेष्ठ बनाना है, ऐसा दिव्य गुण संपन्न बनाना है, ऐसा पावन बनाना है और ऐसा सर्विसेबल बनाना है जो मैं भगवान का प्रिय बन जाऊं। इस बात की दृढ़ता चाहिए, इस बात की दृढ़ता आ जाए तो बाकी सब बातों में दृढ़ता ऑटोमेटिक आ जाए। एक एक विकार को खत्म करने के लिए सोचेंगे आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, वही सबसे पहले आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जो अंदर में गुस्सा आएगा, फिर सोचेंगे मैंने तो आज बाबा से वायदा किया गुस्सा नहीं करूंगा और मेरे सामने तो यही सिचुएशन आ गई, अब क्या करूं। बाहर में नहीं भी करेंगे, मन ही मन में करेंगे। लेकिन अगर ये हमने अपना एक लक्ष्य ही ऐसा रख लिया कि मैं जो था, जैसे बाबा अपने लिए कहते हैं, बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे मेरे यथार्थ रूप में पहचान कर जो मुझे याद करते हैं वो प्रयग योगी मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से बाबा ने कहा अब स्वयं को भी पहचानो, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं क्या हूं, मैं जो हूं जैसा हूं क्या हूं, आदि मेरे संस्कार क्या है देवताओं के, और अनादि मेरे संस्कार क्या हैं, जो बाप के संस्कार है वो मेरे, मेरी तो वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, व्यक्तित्व तो वो होना चाहिए मेरा। इस बात को पहचान कर उसमें दृढ़ हो जाएं तो बाबा की तरह, जो बाबा का फाइनल स्टेज का मैसेज हम सब सुनते हैं, निर्विकारी, बहन जी ने अभी सुनाया, निर्विकारी निरहंकारी, लेकिन उसके साथ साथ ये हो गया ये नहीं है पर क्या है, साथ साथ ज्ञानी तो आत्मा है। ऐसा कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे जो पछताना पड़े, सोच समझ के कदम उठाएंगे। मम्मा हमेशा कहती थी कर्म करने से पहले सोचो, करने के बाद पश्चाताप ना करना पड़े। श्रीमद् भागवत गीता के ये महावाक्य हैं, आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है पर कर्म करने के बाद स्वतंत्र नहीं है, उसका फल भोगने के लिए फिर बंधी हुई है। तो बाबा ने कहा बच्चे दो बातें करो और वो दृढ़ता से करो, निश्चय से करो, क्योंकि निश्चय में विजय है। जो कर्म आपको पश्चाताप की स्थिति में ले आते हैं उनका त्याग करने के लिए उसके बीज का त्याग करो, बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होगा। और उसका बीज है देहाभिमान। अगर देहाभिमान नहीं तो क्या है, जो हम हैं वो हैं, जो नहीं है उसको पर धर्म को छोड़ दें, और जो हम हैं, हमारा जो स्वधर्म है उसमें हम स्थित हो जाए, तो स्वतः ही संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। जिसको हम कहें कि जो सत्युगी देवताओं के लिए कहते हैं कि वहां पर स्वाभाविक आत्म स्वरूप की स्थिति का जीवन है, उसका अभ्यास अभी करें। बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्चे ये ईश्वरी परिवार है, बाबा के सब आप बच्चे हैं। अगर आत्मिक रूप से देखें तो भाई भाई हैं, शरीर के रूप से देखते हो जीवात्मा के रूप से तो भाई और बहन है, दूसरा कोई रिश्ता नाता नहीं, ये सबसे पवित्र नाता। अब इसको अपनाने में क्या मेहनत लगती है मुझे बताओ, और इसी बात की दृढ़ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इसमें बड़ा आनंद है, आप देखो स्वतः पवित्रता की धारणा इसमें है, बड़ी खुशी इसमें रहती है, बड़ा आनंद रहता है। और ऐसे चलने से घर स्वर्ग बन जाता है। बाबा ने कहा जब ऐसी जीवन आप बनाएंगे, इस जीवन में दृढ़ रहेंगे तो घर घर स्वर्ग बनेगा। जब घर घर स्वर्ग बनेगा तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जब तक घर में भी आपस में एक मत नहीं होगी, खिटखिट होगी, खिटपिट होगी, तो क्या कहेंगे, अरे जब से ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में गए ना तब से इनके घर में तो झगड़ा ही होता रहता, तो उससे क्या आपने सिद्ध किया, कौन सी प्रत्यक्षता की। तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर में पहले सुधार चाहिए। सबसे पहला घर तो आत्मा का ये है, अपने अंदर सुधार चाहिए पहले। हम घर में प्रचार करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, ये अगर कोई सोचे कि मैं पहले घर वालों को ज्ञान दूं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों, जानते हैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, और फिर आप ज्ञान देंगे तो क्या उसका असर होगा, कहेंगे रहने दीजिए मैं जानता हूं। माताजी भी कहेंगे हां बस बस बहुत सुन लिया, अभी पहले अपने आप को ठीक करो। तो इसकी बजाय कि हम सुने, हम पहले से अपने में ये दृढ़ता लाएं कि मुझे तो अपने घर में एक मिसाल बन करके रहना है, अपने जीवन से संदेश देना है, ना कि शब्दों से देना है। इस बात की दृढ़ता में आने से घर स्वर्ग बनेगा। और जब घर घर में ऐसा वातावरण बन जाए तो समाज में क्या होगा, जब सभी आत्मिक दृष्टि से एक तो को देखेंगे तो ये जो झगड़े चल रहे हैं, जो राइट्स हो रहे हैं, जो वो सब नहीं होंगे। उसके लिए बाबा कहता आपको लाइट हाउस बनना है, उसके लिए सेवा के निमित्त बनना है, वो बहुत जरूरी है। कितनी भी पीस कमेटी बनाते हैं, कितना भी शांति के लिए प्रयास करते हैं, जिनमें खुद शांति नहीं वो क्या शांति का कार्य करेंगे। तो बाबा के जो बच्चे हैं, जिन्होंने अपने स्वधर्म को पहचाना है, वो उसमें दृढ़ रहते हैं और प्राकृतिक रूप से रहते हैं, नेचुरल। कोई भी सामने आए तो कभी ये मन में ना आए ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना है, नहीं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। आपके वाइब्रेशन से दूसरे को लगे, अपनापन लगेगा, तब आप देखेंगे कि कभी भी ना आपके मन में कोई भय रहेगा, ना कभी अशांति रहेगी, और बल्कि आप तो निमित्त बन जाएंगे नवीनता लाने के लिए जिसकी सख्त जरूरत है इस, तब प्रत्यक्षता होगी और उसके लिए दृढ़ता लाने के लिए भी अपने नियमों में दृढ़ता चाहिए, उसमें ढीलापन नहीं चाहिए। खास नियम जो है ब्राह्मणों के नियमों का सबको तो पता है ना, कुछ नियम हैं जो बहुत आवश्यक हैं और कुछ नियम हैं जो मदद करते हैं हमें। सबसे आवश्यक नियम जो आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए मैजिक का काम करता है वो है अमृत वेले का योग। अगर कोई थोड़ा बहुत ढीले रहते हैं, अपने दृढ़ता नहीं रहती है, नियमों में पक्के नहीं रहते हैं, उसका मूल कारण ये है कि अमृत वेले के योग का आनंद लेना नहीं आता है। और बाबा ने हमें इस बात में पक्का किया। मुझे याद है बॉम्बे में रहते कभी हफ्ते में एक दो बार मिस हो जाता था तो बाबा खास चिट्ठी लिखते, बच्चे कुछ भी हो अमृत वेले जरूर उठ करके याद में बैठ। बल्कि बाबा ने ऐसा पक्का किया कि अलार्म लगा के रखो 4 बजे का और उसको बेड से थोड़ा दूर रखो। ये ना हो कि जैसे ही अलार्म बजे ऊपर से हाथ से बंद किया और सो गए फिर। और उसको कैसे नेचुरल बनाया, बाबा ने वरदान दिया 3 दिन आप उठ करके ये करो बस, चाहे झुटके आए उस समय पहले 3 दिन किसी भी हालत में उठ के बैठो, 4th दिन से वो नेचुरल हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल ऐसा। और उस समय का जो आनंद है मैं आपको क्या बताऊं, आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का क्या अनुभव होता है वो अमृत वेले होता है। ईश्वरीय आनंद क्या है वो अमृत वेले होता है। पुराने 63 जन्म के जो हिसाब किताब हैं वो भस्म होने का कैसे अनुभव होता है वो अमृत वेले होता है। और आगे के लिए पूरी दृढ़ता रहे कि हम अपने बाकी नियमों में पक्के रहें वो अमृत वेले के योग के फल स्वरूप होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हम तो ट्रैवलिंग में भी देखते, बाहर भी जाते रहे हैं, तो ये नियम पक्का होने से वो अमृत वेले में अपने आप बाबा जैसे जगा देता है, चाहे रात को नींद 4 घंटे भी ना हुई हो, लेकिन वो ईश्वरीय आनंद ऐसा है जैसे किसी को दूसरे नशे की आदत होती है, वो टाइम आता है तो कितना भी सुबह को, हंसी हंसी में कहते ना, सुबह को तो रोज मैं वायदा करता हूं कि मैं नहीं पीऊंगा, जब शाम आती है तो बोतल की तरफ हाथ चला जाता। ये पीने वालों की एक बात सुनाते हैं और उसमें तो नुकसान होता है, हेल्थ खराब होती है, जीवन खराब होती है, घर खराब होता है, पैसा बर्बाद होता है, परिवार सारा सत्यानाश हो जाता है, लेकिन अमृत वेले का जो योग है इससे जो वाइब्रेशन फैलते हैं, इससे जो प्रकंपन फैलते हैं, उससे तो स्थापना का कार्य होता है, प्रकृति को पावन बनाते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं और स्वयं को संपूर्ण पावन बनाते हैं। ऐसा महान कार्य जिससे होता है उसको अगर मिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गंवा दिया। इसलिए इसमें तो बहुत दृढ़ता चाहिए। वास्तव में बाबा कहता है योग बल से आप सत्युग की विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो। वो कब करेंगे आप, योग बल कब इकट्ठा करेंगे, سارے دن میں تو کاروبار میں لگ جاتے ہیں، دوسرا ٹائم کون سا ہے؟ سارے دن میں کرم یوگی بن کے بابا کی یاد میں کرم کریں گے تو اس سے برائیوں سے بچے رہیں گے، اس سے وکرم کرنے سے بچے رہیں گے، لیکن جس یوگ بل سے آپ ستیوگی وشو مہاراجن بننے کے لائق بن سکتے ہیں وہ تو امرت ویلے کا یوگ ہے، اس کو کبھی مس نہ کرو کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ جو کوئی سوچے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، بابا نے کہا یوگ بل سے 21 جنم کے لیے ایور ہیلدی بنتے ہو، پہلا جنم تو یہ ہے، اس میں اس کا ایکسپیریمنٹ کرو، کر کے دیکھو پریکٹیکلی۔ اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ یوگ بل سے پرانا حساب کتاب چپتو ہوتا ہے تو ہیلتھ اتنی اچھی بنتی جاتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی کچھ بھائی بہنیں ودیش سے ابھی آتے ہیں ملتے ہیں، بڑا اچھا کمپلیمنٹ دیتے ہیں، یو آر بیکمنگ ینگر ایوری ایئر۔ سال کے بعد ملتے ہیں، آیو بڑھتی جاتی شریر کی، لیکن جو آتما میں بل بھر رہا ہے، جو شکتی بھر رہی ہے، جو اس کے فلسوروپ جو اسپرٹ اندر ہے، وہ تو وہی ہونے والی ہے جو ستیوگی جیون کی ہونے والی، جو دکھاتے ہیں سری کرشن اور ان کے ساتھ کے سکھے سکھیاں کیسے موج میں رہتے ہیں، کیسے گھومتے ہیں، کیسے ہولی کھیلتے ہیں، وہ سنسکار دھارن ہوتا جاتا۔ اور ساکار بابا کو دیکھ، بابا جب 83 سال کی عمر میں تھے تب ہم گیان میں آئے، اور 93 تک 10 سال ان کے ساتھ جو بتائے، جب مدھوبن میں آئیں گے بابا کہے گا بچے نیٹ لگاؤ، 83 کی آیو، 84 کی آیو، 85 کی آیو، 92 تک ایسے چلتا رہا، نیٹ لگاؤ بیڈمنٹن کھیلیں گے۔ کہاں سے آئی بابا کی ایسی ہیلتھ؟ یوگ بل سے۔ اتنی بڑی عمر میں جب بہت بوجھ ہوتا ہے اپنے اوپر تو کیا دیکھتے ہیں؟ عام طور پہ پیٹھ جو ہے نا ایسے ہو جاتی۔ بابا کے چتر میں کبھی کسی نے دیکھا کہ اپ رائٹ سیدھے؟ کارن بابا کے من میں سنکلپ تھا میں وشو کے لیے لائٹ ہاؤس ہوں، ٹاور آف پیس ہوں۔ ٹاور جھکا ہوا نہیں ہوگا، سیدھا ہوگا۔ ویوہار میں سدا بابا نمرتا سے چلے، بہت نرم، کہ میں آپ بچوں کا موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ فادر۔ لیکن بابا کو یہ درڑتا تھی، بہت درڑ سنکلپ تھا کہ مجھے اس جیون میں سمپورن بننا ہے، سمپن بننا ہے، اور بیٹھے بیٹھے شریر چھوڑنا ہے۔ اس کا ابھیاس بابا نے کیا۔ تو بابا کو دیکھتے ہیں، آج پریکٹیکل دادیوں کو دیکھ لو، ویسے کہتے ہیں بھائی 60 سال کی عمر کے بعد مہلائیں جو ہیں نا ان کا وہ برین جو ہے وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پرشوں کا 70 سال کے بعد ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پریکٹیکل دیکھ لو، دادی جی کیا کر رہے ہیں، آپ سب سے ملے ہیں، اتنی انرجی کہاں سے آئی ان میں؟ سبھی سینٹرز کی کاروبار سنبھالتے ہوئے، سب بھائی بہنوں سے ویکتیگت ملتے ہوئے، یہ ہے یوگ بل کی ریزلٹ۔ تو جتنا اس بات کی ویلیو اپنے دل میں ہوگی اتنا اس کے اوپر اٹینشن رہے گا، نہیں تو نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنا پہلا نیم میں درڑ رہنا کہ مجھے امرت ویلا کبھی مس نہیں کرنا ہے، ایک تو مس نہیں کرنا ہے، اور دوسرا ہر روز مجھے نیا انبھو کرنا ہے، کچھ نوینتا بابا سے لینی ہے، تو دیکھو کیا سے کیا بن جاتا ہے جیون۔ اور دوسرا بابا کی وانی جو ہے मैं तो उसको मेरे ख्याल में कम से कम एक एक मुरली जो है वो 15-20 बार पढ़ चुका होगा, सुन चुका होगा, टेप से सुनी होगी, डायरेक्ट सुनी होगी, लेकिन मुरली जैसा सुख और किसी में नहीं। वो जो भक्ति में है, श्री कृष्ण की मुरली बजते ही सब अपना छोड़ करके आ जाते थे, वो क्यों ऐसी निशानियां दिखाई? क्या है उसके अंदर? वो काठ की मुरली नहीं है। लेकिन ये श्री भगवानों वाच। गांधी जी कहते थे, मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं श्रीमद् भागवत गीता को खोलता हूं, मेरे को उसका उत्तर मिल जाता। वो है भक्ति मार्ग में निशानी उसकी, उसका शास्त्र बाद में बना, जो प्रैक्टिकल आज हम लोगों को बाबा सुना रहे। ये वैल्यू दिल में चाहिए जो कि किसके महावाक्य हम सुनते हैं, कौन हमें आकर के पढ़ा रहा है, इसका नशा चाहिए, इसकी खुशी चाहिए। आज कौन मिलने आ रहा है आपसे? शाम को मिलेंगे, किससे मिलेंगे? गुलजार दादी से नहीं, सामने तो बैठी दादी होंगी। तो जिनको ये लगन है, जिनको ये अंदर में दिव्य दृष्टि है कि हम किससे मिलने आए हैं, ये निश्चय है, चाहे वो कितना भी दूर बैठे होंगे, वो वायुमंडल से, बाबा के शब्दों से, बाबा के वाइब्रेशन से ऐसा महसूस करेंगे, बाबा मेरे से मुलाकात कर रहा है, बाबा मुझे सुना रहा है, और दिल ही दिल में गदगद होते रहेंगे। अति इंद्रिय सुख क्या चीज है जो गोप गोपियों का गायन है, वो आज जैसे सुबह की मुरली के समय सुनते हुए आनंद आया, उससे अधिक आएगा जब सन्मुख सुन रहे। लेकिन ये वैल्यू अपने दिल में सदा रहनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमने मुरली सुबह को पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो जैसे 2-3 दिन खाना नहीं खाओ तो क्या हाल होता है, या आपका बहुत नुकसान हो जाए। जो आपके पास कुछ पूंजी जमा हो वो गुम हो जाए, ऐसी हालत हो जाती। इतनी सुंदर चीज कल्प में एक ही बार मिलती है, डायरेक्ट श्री भगवानों वाच सुनने का ये अभी ही समय है, इसको कभी मिस ना करें, इस बात में दृढ़ रहें। कुछ भी हो, बाबा तो बल्कि ये भी कहते थे, पहले योग करके मुरली पढ़ो या सुनो, उसके बाद सेवा करो, तब तक नाश्ता नहीं करना चाहिए। मुझे तो वो दिन याद है बाबा के पास, 1959 की बात कह रहा हूं, बॉम्बे की। बाबा टेलीफोन पर किसी को मुरली सुनाते थे, उस परिवार के दादा सामने बैठे हैं, कमला दादी को सुनाते थे, और उस समय बाबा की मुरली सुन के हम हैंगिंग गार्डन में कमला नेहरू पार्क में जाके पहले सेवा करके फिर आकर के नाश्ता करें, कि जो भगवान से इतना अमूल्य खजाना आपको मिलता है, अगर उसका आपने दान नहीं किया तो आप कंजूस मनहूस। पहले दान करो, उसके बाद नाश्ता करो। क्यों बाबा इतना जोर देता था कि जब आप किसी को दान करते हैं तो उसकी खुशी प्रत्यक्ष, और वो आपके जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने के लिए आपने बीज बोया। और साथ में बाबा ने कहा बल्कि इसको अनेकों में बांटने के लिए अपना जो विनाशी धन है उसको भी अविनाशी बनाओ। कौन करेगा ऐसे? जिसको इसकी वैल्यू होगी, जिसके दिल में इसके लिए इज्जत होगी कि ये किसके महावाक्य है। इसमें ये दो बातों में अगर आप दृढ़ हो गए तो बाकी सब बातों में दृढ़ता ऑटोमेटिक आ जाए। अब आप बताइए कि सुबह के योग करने में और बाबा की वाणी सुनने में कोई मेहनत है? इसलिए इसका नाम रखा बाबा ने सहज ज्ञान, सहज राजयोग मार्ग। सहज सरल भी है, स्वाभाविक भी। और इन नियमों को अपनाने में बहुत आनंद आएगा, तकलीफ नहीं होगी, बल्कि ये अपनाने से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो जब हम सभी बाबा के बच्चे इसमें रेगुलर हो जाएं, अच्छी तरह दृढ़ हो जाएं, और इसके फलस्वरूप जैसे भोजन करते हैं तो उससे शरीर की एनर्जी, शक्ति अपने आप बनती है, इसी तरह से याद और ज्ञान का जो बल है वो आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बना देता है, सर्वोत्तम बना देता है, पुरुषोत्तम बना देता है, नर से श्री नारायण बना देता है और नारी को पूजनीय श्री लक्ष्मी बना देता है। ऐसा बनते जाएंगे, इतने श्री लक्ष्मी और इतने श्री नारायण बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। मैं ज्ञान से पहले फिलॉसफी की किताब कुछ ना कुछ पढ़ता था, लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला और ये समझ में आया कि भगवान स्वयं जो वाणी आकर के ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाते हैं वो हमें पढ़ने को मिल रही, सुनने को मिल रही है। जितनी किताबें पढ़ते थे वो थी इसीलिए कि खोज में थे भगवान को पाने के लिए। स्वयं भगवान मिल गया और उनके महावाक्य पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं तो उसकी क्या गहराई है? उसकी गहराई में जाना बेहतर है और बातों में जाने से। कभी कभी कई लोग कहते हैं भाई थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करो, और क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। तो मेरा उत्तर एक ही होता है कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है। कंपैरिजन करेंगे तो वो सब भक्ति मार्ग के या सन्यास मार्ग के महान आत्माएं हैं, और हम जो ज्ञान मार्ग में अभी आए हैं, ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा टीचर कहो, फिलॉसफर कहो, शिक्षक कहो या तो ज्ञानदाता कहो, वो स्वयं परमात्मा है। उससे बढ़ के और कोई है नहीं। खामखा अपना टाइम क्यों गंवाएं हम? अगर बाबा की वाणी की एक एक लाइन को कोई पढ़ करके उस पर विचार करे तो जैसे बाबा कहता ना, मंथन करने से वो आपका आपकी शक्ति बन जाएगी। जो ज्ञान की एक एक पॉइंट है वो धारण होगी तो शक्ति का रूप बन जाएगी। तो शक्तिशाली जीवन बनाना, शक्तिशाली अपना मनोबल बनाना और ज्ञान मार्ग पे एक्यूरेट चलना है तो उसके लिए बाबा की वाणी है एक प्रकार से आईना। जैसे वाणी पढ़ेंगे आपको साक्षात्कार होगा स्वयं का कि मैं किस लेवल तक आया हूं, अभी और क्या बाकी। और ज्ञान मार्ग पर चल करके सबसे श्रेष्ठ जीवन बनाने वाली एग्जाम्पल हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने अपने जो अनुभव सुनाए हुए हैं वाणी के अंदर, उससे बढ़ के और किसी के नहीं है। क्योंकि जितना बाबा ने मेहनत की है, तपस्या की है, विचार सागर मंथन किया है, दूसरे नहीं कर पाते। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप जितना हो सके बाबा की मुरली का अध्ययन करके उसको, उसके ऊपर अच्छी तरह मंथन करके उसको धारणा करेंगे तो देखिए इस जीवन की वैल्यू क्या है हमारी। देखने में हम साधारण, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि वो साधारण होते भी असाधारण, ऐसे ही बाबा के सभी बच्चों को महसूस होगा कि वास्तव में ईश्वरी जीवन क्या है, कितनी महान है, जो बाबा कहता है कि देवताओं से भी ये ऊंची है। देवताओं की जीवन को गोल्डन एज्ड कहा जाता है और ये है डायमंड एज्ड, पुरुषोत्तम संगम युग, जो थोड़ा सा समय है। तो डायमंड जैसी हीरे तुल्य जीवन कैसे है, वो कब अनुभव होगी, जब वाणी को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। सुनने में भी थोड़ी कम धारण होती, मैंने देखा सुनते समय विचार कहीं ना कहीं चले जाते, सुनो फिर स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, क्या मजा आता है उसमें। और फिर आपस में लेन देन करो, किसी को चिट्ठी लिखो तो उसमें बाबा की वाणी में से कोई पॉइंट्स लिखो, टेलीफोन पर बात करो तो सुनाओ आज बाबा ने क्या कहा, आपको बड़ा मजा आएगा उसमें। जिसको कहा जाता है मिठाई अकेले खाने में इतना आनंद नहीं है जितना बांट करके खाने में, तो रोज वाणी सुनना मिठाई भी है, खजाना इकट्ठा करना भी है और इंजेक्शन भी है ताकत का उसमें। तो जितना आनंद लेते हैं खुद वो बांटने से बढ़ता है। ये दो नियम पक्के करेंगे अपनी जीवन को ऐसा एक क्या कहें आदर्श जीवन बना देंगे तो बाबा कहता है आपके चेहरे से सब कहेंगे यही है, सच्चाई इनके पास है, श्रेष्ठता इनके पास है और सत्य मार्ग यही है। जब ऐसा कहेंगे तो फिर कहेंगे वही है वही है वही है। ओम शांति।